समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी वीसी प्रमोद। नमस्कार प्रमोद।
हेलो मनोज, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग फॉर यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, wherein we share the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 4th of February 2025. But we begin with the headlines.
जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह सचिव गोविंद मोहन और खुफिया ब्यूरो तथा रॉ जैसी एजेंसियों के प्रमुख भी भाग लेंगे।
That's right. The Lok Sabha yesterday took up for discussion on the motion of thanks in the President's address to the joint houses of Parliament. Speaking during the discussion, Leader of Opposition and Congress MP Rahul Gandhi criticized the President's speech, calling it a repeat of the previous years and a laundry list of government achievements. Rahul Gandhi raised concerns about unemployment, stressing that the future of the country depends on the youth. He said the government has failed to address the unemployment issue despite the country's growth. He pointed out that manufacturers' share of the GDP has dropped from 15.3% to 12.6%, the lowest in the past 60 years. He concluded by reaffirming that the constitution is supreme and will continue to guide the country. Earlier, BJP MP Ramveer Singh Bhiduri, moving the motion, listed the achievements of the Narendra Modi-led government, including public welfare schemes. He attacked the AAP-led Delhi government for allegedly failing to implement central schemes like Ayushman Bharat and the Pradhan Mantri Awas Yojana in the capital. He further accused former Delhi CM Arvind Kejriwal of lavish spending on his official residence. BJP MP Ravi Shankar Prasad alleged that the Congress is uncomfortable whenever the Mahakumbh is mentioned, noting that 35 crore people have participated in the event so far. He accused the Congress of feeling entitled to govern the country. Other MPs also raised concerns during the discussion. Naresh Chandra Uttam Patel of the SP pointed out that the absence of a mention of the minimum support price MSE guarantee in the President's address. Dr. Kakoli Ghosh Dastidar of the TMC criticized the omission of food inflation and farm loan waivers. Arvind Ganpat Savant of the Shiva Sena, UBT, spoke about schemes benefiting farmers but raised concerns about disparities in the education system. The House was adjourned and will reconvene today at 11 a.m.
संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कल राज्यसभा में चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की किरण चौधरी ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के कई बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष कृषि क्षेत्र के लिए सरकार के प्रयासों को लेकर झूठा अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम सुनिश्चित करने के कई उपाय किए हैं। चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी, वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और अमरीकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की समस्याओं की अनदेखी कर रही है, जिसके कारण देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने श्री खड़गे के इस आरोप का खंडन किया कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार यूपीए शासन के 10 वर्षों के दौरान आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या NDA शासन के 10 वर्षों की तुलना में 57% अधिक है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने भी कृषि और बेरोजगारी तथा महिला आरक्षण के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के पिछले 5 वर्षों में कृषकों की आय में मामूली वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 5 में से 2 किसान कर्ज में है और किसानों के लिए कोई कानूनी गारंटी नहीं है। डीएमके पार्टी के एम षणमुगम ने केंद्र पर मेट्रो और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं जैसी तमिलनाडु सरकार की विभिन्न मांगों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, एजीपी के बीरेंद्र प्रसाद बैश्य, बीजेडी की सुलता देव और भाजपा के रामचंद्र जांगड़ा और बंशीलाल गुर्जर सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। हालांकि समय की कमी के कारण भाजपा सांसद श्री गुर्जर अपना भाषण पूरा नहीं कर सके और आज अपना भाषण फिर से शुरू करेंगे। बाद में सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा अधूरी रही।
Prime Minister Narendra Modi has congratulated musician Chandrika Tandon on winning the Grammy Awards for her album Triveni. In a social media post, Mr. Modi commended Ms. Tandon's passion towards Indian culture and accomplishments as an entrepreneur, philanthropist and musician.
भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि पिछले महीने की 31 तारीख तक केवल 6,577 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के बैंक नोट प्रचलन में रह गए हैं। रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि मई 2023 में प्रचलन में रहे कुल 3,56,000 करोड़ मूल्य के 2000 रुपए के नोटों में से 98.15% वापस आ गए हैं। रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी और लोगों से 7 अक्टूबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा करने या बदलने का आग्रह किया था। 2000 रुपए का नोट अब भी वैध मुद्रा है। रिजर्व बैंक ने लोगों से कहा है कि वे अभी भी भारतीय डाक के माध्यम से आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी पर भी 2000 रुपए के नोट जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं।
In international news, Sri Lanka is celebrating its 77th National Day today. The official celebrations are being held at the Independence Square in Colombo, while other cities will also be holding celebrations to mark the event. The official program features a military parade, cultural performances and a special address by President Anura Kumara Dinasayake, followed by a gun salute at Gaul Face Green by the Sri Lankan Navy. Although nearly 200 million was spent on the 76th Independence Day celebrations last year, the expenditure has been limited to 87 million this year. And US President Donald Trump has announced a one-month delay in US tariff hikes on Mexico, signaling that a potential deal could be coming. He revealed that he had a friendly conversation with Mexican President Claudia Sheinbaum, who agreed to send 10,000 soldiers to the US-Mexico border to help stop the flow of fentanyl and illegal migrants. Trump also mentioned that discussions with Canada were ongoing, including talks with Canadian Prime Minister Justin Trudeau. These hikes of 25% tariffs on goods from Mexico, 25% tariff on goods from Canada, and a 10% tariff on Canadian energy sources, and an additional 10% tariff on imports from China were to go into effect on Tuesday.
अब खबरें महाकुंभ की।
जी।
भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक महाकुंभ का लाभ लेने के लिए आज प्रयागराज पहुंचेंगे। वे त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाएंगे। भूटान नरेश इस यात्रा के सिलसिले में कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे।
महाकुंभ आस्था, एकता और सांस्कृतिक भव्यता का प्रतीक बन गया है। भारत और विदेशों से करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के इस पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान भूटान नरेश प्रयागराज में अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर का दर्शन करेंगे। इसके बाद डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र के माध्यम से आधुनिक तकनीक के जरिए महाकुंभ की गहराई को भी जानेंगे। भूटान नरेश के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। पिछले सप्ताह 71 देशों के मिशन प्रमुख और राजनयिक सहित 110 लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया था। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ का मेला 26 फरवरी तक चलेगा। वहीं अब तक 37 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
And now it's time for some sports news. In the Indian Super League football, Odisha FC held on for a 2-2 draw against Northeast United FC at the Kalinga Stadium in Odisha last evening. An injury time goal from Isaac Vanluruvatta helped Odisha secure the draw and earn a point. FC Mohan Bagan will take on Punjab FC at the Salt Lake Stadium in Kolkata tomorrow. The match will begin at 7:30 p.m. IST. In table tennis, India's Manoj Shah and Diya Chitale will be in action in the WTT Singapore Smash in Singapore this evening. The duo is set to face the Mexican pair of Marcos Madrid and Aranza Cosio in the mixed doubles pre-quarterfinals. And in the women's doubles event, India's Ahiyaka Mukherjee and Sudhirtha Mukherjee will compete against Thailand's Suthasini Savathaput and Oravan Parangang in the round of 32. Another Indian player, Yashaswini Ghorpade, alongside her Australian partner Minyoon Ji, will take on the Swedish pair of Linda Bergstrom and Christina Kohlberg in the same round this morning. And in the Mumbai Open WTA 125 tennis, second seed Rebecca Marino of Canada advanced to the round of 16 with a dominant 6-0 6-2 win over Czech Republic's Sara Bilic yesterday.
अब सुनते हैं महानगरों के समाचारों को। पहले दिल्ली समाचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कल अंतिम समय सीमा तक सभी राजनीतिक दलों ने अपना पूरा दमखम दिखाया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जंगपुरा, बिजवासन और द्वारका में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी छतरपुर और कालकाजी विधानसभा क्षेत्रों में सार्वजनिक बैठकें की। उधर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद प्रियंका गांधी ने जंगपुरा में डोर टू डोर कैंपेन और कस्तूरबा नगर क्षेत्र में रोड शो कर मतदाताओं से पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल होगा और मतगणना शनिवार को होगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान और मतगणना के दिन दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी लाइनों पर प्रातः 4 बजे से शुरू हो जाएंगी। सभी लाइनों पर सुबह 6 बजे तक ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। उसके बाद दिन भर ये सेवाएं नियमित रूप से चलेंगी।
That's right. And moving on to Chennai, the Directorate of Revenue Intelligence seized 4.6 lakh suspected fake cigarette sticks at the Chennai port. These cigarettes were smuggled from Thailand worth 9.2 crore rupees. The cigarettes were sent to a laboratory for analysis as they could be fake ones. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin urged the Minister of External Affairs Jay Shankar to take diplomatic efforts to the highest level to stop the arrest of Indian fishermen and to secure the release of all the fishermen in the Sri Lankan prisons. In a letter to Jay Shankar, Chief Minister said that Sri Lankan Navy apprehended 10 fishermen along with their mechanized fishing boats from the Mandapam fishing harbour, Ramanathapuram district. He also listed out the various incidents of the fishermen being caught by the Sri Lankan Navy. He urged the External Affairs Minister to secure the release of all the fishermen and their fishing boats in the custody of Sri Lankan authorities.
अब महाराष्ट्र मुंबई के समाचार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश अजय गडकरी और कमल खता की खंडपीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया कि शाम 6 बजे मतदान के आधिकारिक समापन समय के बाद लगभग 75 लाख वोट डाले गए। याचिका में दावा किया गया कि इन अंतिम क्षणों में वोटों की प्रामाणिकता को रिकॉर्ड करने या सत्यापित करने की कोई पारदर्शी प्रणाली प्रदान नहीं की गई। इसमें आरोप लगाया गया कि लगभग 95 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए वोटों और वास्तव में गिने गए वोटों में विसंगतियाँ हैं। ये कहते हुए कि चुनाव अधिकारी इन विसंगतियों की रिपोर्ट करने में विफल रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा को अमान्य घोषित किया जाए। मामले को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया। न्यायालय ने आयोग को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने रेलवे परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 2025-26 के बजट में महाराष्ट्र को रिकॉर्ड 23,778 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। महाराष्ट्र के बजट आवंटन पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने बताया कि राज्य में चल रहे रेलवे कार्य की लागत 1.7 लाख करोड़ रुपये है। मुंबई के उपनगरीय रेलवे के बारे में श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई सेंट्रल, बांद्रा, जोगेश्वरी, वसई, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, परेल, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, कल्याण और पनवेल सहित पश्चिमी और सेंट्रल लाइनों पर विभिन्न टर्मिनलों की क्षमता को बढ़ाने का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि 16,240 करोड़ रुपये के निवेश से नए रेलवे ट्रैक विकसित किए जा रहे हैं। उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में भीड़भाड़ को देखते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार की योजना भीड़भाड़ को कम करने की है। पहले चरण में 2 ट्रेनों के बीच का समय अंतराल 180 सेकंड से घटाकर 150 सेकंड तक तथा दूसरे चरण में 120 सेकंड तक किए जाने की योजना है। इस कटौती से ट्रेनों की आवृत्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे यात्रियों को यातायात में सुविधा होगी।
एंड मूविंग ऑन टू बेंगलुरु, Railway Minister Ashwini Vaishnav has informed that Karnataka was allocated 7,564 crore rupees in the budget announced yesterday. Addressing state-specific media persons through video conference, the minister informed that 3,233 kilometers of railway lines are electrified in the state, which is over 96% of the total lines. He added that all the remaining tracks will be electrified soon in Karnataka. He said that Karnataka has benefited since 2014 as 1,652 kilometers of new railway lines were laid down till now. That is more than the railway network of Sri Lanka. He also added that there are 31 ongoing projects to lay new railway lines in the state at a cost of over 47,000 crore rupees under Amrit Bharat Railway Station Modernization Scheme. 61 railway stations are also being provided with ultra-modern infrastructure. He also said that the Vande Bharat trains and Namo Bharat trains will make railway travel more comfortable, faster and easier in the days to come.
अब पश्चिम बंगाल कोलकाता समाचार।
जी,
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने रेलवे परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 2025-26 के बजट में पश्चिम बंगाल को 13,955 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बजट में राज्य के आवंटन के बारे में 3 फरवरी को पत्रकारों से वर्चुअली बात करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि ये धनराशि यूपीए शासन के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रेल मंत्रालय के प्रभारी होने की तुलना में 3 गुना अधिक है। हालांकि उन्होंने कहा कि बंगाल में रेलवे परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए भूमि अधिग्रहण में राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में रेलवे लाइनों के विस्तार, यात्री सुविधा, स्टेशनों के निर्माण और नई ट्रेनों की शुरुआत के काम में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य में रेलवे परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 68,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इन परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए भूमि अधिग्रहण और कानून व्यवस्था में काम में सहायता करने का आग्रह किया। रेल मंत्री ने कहा कि राज्य के 101 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
मूविंग ऑन टू हैदराबाद, तेलंगाना डीजी ऑफ प्रिजन्स डॉक्टर सौम्या मिश्रा इनॉग्रेटेड अ वीविंग यूनिट एट सेंट्रल प्रिजन इन निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट यस्टरडे इन द प्रेजेंस ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस सिंधु शर्मा। The weaving unit, comprising 13 weaving machines, will employ 26 jail inmates who will make towels, napkins, bedsheets and clothes, among others. The products will be distributed to prisoners and convicts and will also be sold to the public through prison department stalls. The machinery was shifted from Central Prison Cherlapalli in Hyderabad to Central Prison Nizamabad recently and assembled there.
अब मौसम का हाल जानते हैं। पहले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु की मौसम की खबरें जानते हैं प्रमोद से।
जी, Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and the maximum will be around 32 degrees. In Bengaluru, it is expected to have a fog or mist which should occur in the early mornings. The minimum temperature was 16 degrees Celsius and the maximum will be around 32 degrees. In Hyderabad also, fog and mist in the morning and partly cloudy sky later. The temperature will hover between a minimum of 20 degrees and a maximum of 34 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 4 फरवरी है। आज ही के दिन 1628 में शाहजहां को आगरा में मुगल बादशाह का ताज पहनाया गया।
एंड इन 1986 द यूएस पोस्ट ऑफिस इश्यूज अ कमेमोरेटिव स्टैम्प फीचरिंग सोजर्नर ट्रूथ।
आज ही के दिन 1881 में लोकमान्य तिलक के संपादन में दैनिक समाचार पत्र केसरी का पहला अंक आया था।
In 1902, on the 4th of February, Charles Lindbergh became the first man to fly solo across the Atlantic.
1924 में आज ही के दिन महात्मा गांधी को खराब स्वास्थ्य होने के कारण समय से पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया।
And in 1906, Clyde Tombaugh, astronomer, discovered Pluto.
आज ही के दिन 1960 में भोपाल रियासत के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान का निधन हुआ।
In 1990, 4th February, Ernakulam was declared the first totally literate district in India.
आज ही के दिन 1973 में भारत के सबसे बड़े मर्चेंट पोत जवाहरलाल नेहरू का उद्घाटन हुआ। इसमें 88,000 DWT का सुपर टैंकर था।
In 1992, National Renewal Fund for Industry set up. It aims to provide a social safety net to protect the workers in industrial enterprises from possible adverse consequences of the new economic policy.
आज ही के दिन 1990 में केरल का एर्नाकुलम जिला देश का पूर्ण साक्षर जिला घोषित हुआ। यहां साक्षरता की दर 100% दर्ज की गई।
In 1994, India elected to the executive boards of the UNDP, UN Population Fund and UNICEF.
आज ही के दिन 1996 में दक्षिण पश्चिमी नेपाल के लुम्बिनी में उस वृक्ष का पता चला जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
That's right. Starting with the death anniversary, today is the death anniversary of famous American singer and drummer. Her name was Karen Carpenter. She was born on the 2nd of March 1950 and she died on the 4th of February 1983. The Carpenters were basically a brother and sister group, Rajesh, Richard and Karen, who formed half of the highly successful duo of the Carpenters with her older brother, Richard. Having a distinctive 3-octave contralto range, she was praised by her peers for her vocal skills. Carpenter's work continues to attract praise, including appearing in Rolling Stone's 2010 list of the 100 greatest singers of all time. Top of the World is a 1972 song written and composed by Richard Carpenter and John Bettis and first recorded by American pop duo Carpenters. It was a Billboard Hot 100 number one hit for the duo for 2 consecutive weeks in 1973. It also became Carpenter's second number one and the 10th top 10 single in the Billboard Hot 100. Let's listen to Top of the World.
Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky. Got the sun in my eyes. And I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming.
मनोज, आपको फेस देख के लग रहा है कि आप बहुत खुश हो गए गाना सुनके।
जी हाँ, बहुत ही
टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुंच गए आप।
उम्दा
जी,
आज पुण्यतिथि है भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक भगवान दादा की। उनका जन्म 1 अगस्त 1913 को मुंबई में हुआ था। भगवान दादा अपनी प्रसिद्ध सामाजिक और हास्य फिल्म अलबेला के लिए जाने जाते हैं। हिंदी फिल्मों में नृत्य की एक विशेष शैली की शुरुआत करने वाले भगवान दादा ऐसे अलबेला सितारे थे जिनसे महानायक अमिताभ बच्चन सहित आज की पीढ़ी तक के कई कलाकार प्रभावित और प्रेरित हुए। भगवान दादा का वास्तविक नाम भगवान आभाजी पालव था। भगवान दादा का जीवन और फिल्मी करियर जबरदस्त उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन वे सिनेमा के इतिहास में अपनी खास जगह रखते हैं। इनकी मुख्य फिल्में हैं अलबेला, मतलबी, लालच, मतवाले, बदला आदि।
भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े यार दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे, दर्शन छोटे।
दुनिया के इस चिड़ियाघर में तरह तरह का जलवा, मिले किसी को सूखी रोटी, किसी को पूरी हलवा, अरे भाई किसी को पूरी हलवा, ओ बेटा जी खिचड़ी का मजा।
कभी is also the death anniversary of Satyendranath Bose. He was an Indian theoretical physicist and mathematician. He is best known for his work on quantum mechanics in the early 1920s in developing the foundation of the Bose-Einstein statistics and the theory of the Bose-Einstein condensate. A fellow of the Royal Society, was awarded India's highest civilian award, the Padma Vibhushan, in 1954 by the Government of India.
Aaj punyatithi hai Bharat ke prasiddh vaigyanik दौलत सिंह कोठारी की। उनका जन्म 6 जुलाई को उदयपुर राजस्थान में हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विज्ञान नीति में जो लोग शामिल थे उनमें दौलत सिंह कोठारी, होमी भाभा, मेघनाथ साहा और सीवी रमन थे। डॉक्टर कोठारी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। साल 1961 में वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, जहां वे 10 वर्ष तक रहे। 1964 में उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रशासकीय सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें सन 1962 में पद्म भूषण से और फिर 1973 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
मूविंग ऑन टू बर्थडेज, मनोज, टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित भीमसेन जोशी। He was born on the 4th of February 1922 and he is also known by the honorific prefix Pandit. He is known for his khayal form of singing as well as for his popular renditions of devotional music, bhajans and abhangs. Joshi belongs to the Kirana Gharana tradition of Hindustani classical music. He is noted for his concerts between 1964 and 1982. Joshi toured Afghanistan, Italy, France, Canada and the USA. Every year there is the Savai Gandhar Music Festival, which is a homage to his guru Swami Gandhar. We have one of his renditions. Sune.
Jo bhaje Hari ko sada, so hi param pad paave. So hi param pad paave. So hi param.
आज जन्म दिवस है हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का। उनका जन्म 4 फरवरी 1974 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ है। उर्मिला ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में 1981 की फिल्म कलयुग से किया और एक संपूर्ण अभिनेत्री के रूप में वे पहली बार 1991 की फिल्म नरसिम्हा में आई, 1995 की फिल्म रंगीला, 1997 की फिल्म जुदाई और 1998 की सत्या में उर्मिला के अभिनय को बहुत सराहा गया। इन तीनों फिल्मों को फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामित किया गया था। आज जयंती है बिरजू महाराज की। उनका वास्तविक नाम ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा था। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कलाकारों में से एक थे। वे भारतीय नृत्य की कथक शैली के आचार्य और लखनऊ के कालका बिंदा दीन घराने के एक मुख्य प्रतिनिधि थे। और अब समय है आपसे विदा लेने का। अब अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यही समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
That's right. Stay tuned for coming up next, Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thank you for tuning in. Have a superb day. Namaskar. Namaskar.